एक समय तुम अति सूक्ष्म शैल थे, यह शैल विभाजित हुआ, कई गुना हुआ और मांस का एक पिंड बन गया। बाद में वह दिखाई देने वाला और महसूस करने वाला इंसान बन गया। तुम बड़े हुए और हर साल तुम एक नया रूप पाते थे। कभी आपने सोचा कि यह कितना बड़ा चमत्कार है? या आपने कभी यह नहीं सोचा कि इस सृष्टि में सब कुछ एक निश्चित पैमाने पर पैदा किया गया है और सभी चीजों में दोष रहित संतुलन है? या ये कि आप जिस धरती पर चल रहे हैं वह प्रति घंटे 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है? क्या कभी आपने सोचा विभिन्न प्रकार के पौधे जो धरती को शोभा दे रहे हैं उनका सृजन कैसे हुआ? मनुष्य को लुभाने वाले यह फल स्वाद, महक और रंग के साथ मैली मिट्टी से कैसे निकलते हैं? फलों के छिलके वास्तव में कितने अद्भुत ढक्कन हैं? क्या कभी आपने यह सोचा आने वाली प्राकृतिक तबाही आपके शहर को उजाड़ सकती है और आपके घर को एक पल में तबाह कर सकती है और आप अपनी सारी संपत्ति कुछ ही क्षणों में खो सकते हो? आपने कभी यह सोचा कि आपका जीवन बड़ी तेजी से गुजर रहा है और एक दिन आप बूढ़े और निर्बल हो जाएंगे और अपना स्वास्थ्य और खूबसूरती गवा देंगे और मृत्यु आप नहीं जानते कि वो कब आएगी, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की तरह वह आपको भी आएगी। ईश्वर ने हर मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। सच्चाइयों में से यह कुछ ही बातें हैं जिनके बारे में इंसानों को सोचना चाहिए। मनुष्यों की सोचने की क्षमता। प्रत्येक व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता है, लेकिन हो सकता है वो इससे सतर्क न हो। जब व्यक्ति इस क्षमता का उपयोग शुरू करता है तब वह उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनके बारे में पहले कभी उसने सोचा नहीं था। ईश्वर ने हर चीज को पैदा किया है, हम उनको एक खास मकसद के तहत देखते हैं जो मनुष्य को आह्वान करती है कि हम इनके बारे में चिंतन मनन करें। कुरान की एक आयत में कहा गया है, निसंदेह आकाशों और धरती की संरचना में और रात और दिन की अदला बदली में और उन नौकाओं में जो समुद्र में चलती हैं जिससे लोग फायदे हासिल करते हैं और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा और जिससे धरती को उसके मृत्यु के पश्चात जीवित किया और उसमें हर प्रकार के जीवों को फैलाया और हवाओं के चलने में और आकाश और धरती के बीच बादलों के नियुक्त होने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। जो व्यक्ति इस जगत की रचना और अनंत सृष्टि के बारे में सोचता है वह इसकी भव्यता और उसके दोष रहित संतुलन के बारे में अच्छी तरह समझ सकता है। मनुष्य अंतरिक्ष के अंतहीन आकाश में लटकते एक छोटे से गोले पर जीता है और इस गोले को आकाश से आने वाले खतरों का हर पल अंदेशा है और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इन खतरों से उन्हें बचा सके। उदाहरण के लिए लाखों टन वाली अनगिनत उल्काएं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं, अगर उनमें से कोई भी पृथ्वी से टकरा जाए तो यहाँ पर मौजूद चीजों के अस्तित्व के लिए वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। पृथ्वी के लिए एक और खतरा सूर्य पर होने वाले भयानक विस्फोट है। इन विस्फोटों के बढ़ जाने की स्थिति में उससे निकलने वाली खतरनाक किरणें और भी तीव्र होकर पृथ्वी पर पहुंच सकती है। इंसानी जिंदगी के लिए बेशुमार खतरे हैं, सिर्फ आसमानों से ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी से भी। धरती की पपड़ी के थोड़े ही नीचे आग का एक बहुत गर्म और जलद पट्टा है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, और हमारी पृथ्वी की पपड़ी बहुत ही पतली है, इस कारण ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता है और उसका लावा जमीन की सतह पर फैल सकता है, या फिर एक तीव्र भूचाल पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पैदा कर सकता है। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह हर क्षण इस प्रकार के खतरों के साथ जी रहा है। बहुत ही नाजुक संतुलन के कारण हमारी दुनिया इस तमाम संभावित खतरों से सुरक्षित रहती है। इन चीजों पर चिंतन मनन से इंसान समझ जाता है कि इस धरती के सभी जीव ईश्वर की मर्जी से जिंदा है और उस दोष रहित संतुलन पर आभार प्रदर्शन करता है जो ईश्वर ने बनाया है। सृष्टि में पृथ्वी का स्थान। जिस प्रकार का जीवन धरती पर हम देख रहे हैं, अंतरिक्ष उससे निर्वात भिन्न है। अभी इस क्षण आप जहां बैठे हैं वहां से 56 करोड़ किलोमीटर ऊपर आकाश में रेडिएशन का खतरनाक तूफान चल रहा है, जिनकी रफ्तार प्रति घंटा 1,00,000 किलोमीटर है, जो सूरज पर होने वाले विस्फोटों से पैदा होता है। अंतरिक्ष में ठिठुर देने वाला तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और ग्रहों के अंदर पिघला देने वाला भयानक तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। महाकाय उल्काएं जो कि बहुत ही तीव्र गति से पूरे अंतरिक्ष में घूम रही है। अब आप अपने अस्तित्व की अनुभूति इस अनंत अंतरिक्ष में कीजिए। इस बात पर सोचने के लिए सबसे पहले तुलना करते हैं जमीनी दूरियों और आकाशी दूरियों की। सृष्टि में मौजूद सबसे करीब के ग्रहों के बीच की दूरी 30,00,000 करोड़ किलोमीटर है। आकाश में तारे जिन्हें तुम आकाश में टिमटिमाते हुए देख रहे हो, उनमें तुमसे सबसे करीब के तारे की दूरी 500,00,000 करोड़ किलोमीटर है। आओ अब हमारी आकाशगंगा के भीतर हमारी स्थिति को देखें। इस दुधिया आसमान में करीब 25,000 करोड़ तारे हैं। हमारा सूर्य उनमें से सिर्फ एक है। 9 ग्रह बड़े सामंजस्य और तारतम्य के साथ सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को सोलार सिस्टम कहा जाता है। ये सोलार सिस्टम जो 1200 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर आधारित है, इसके भीतर हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी जगह को घेरे हुए है। अगर हम कल्पना करें कि पृथ्वी संगमरमर की एक गोली है तो सूर्य फुटबॉल के बराबर होगा और गोली से 280 मीटर की दूरी पर लगेगा। एक आकाशगंगा में मौजूद तारों की इतनी विशाल संख्या होते हुए हमारी आकाशगंगा अंतरिक्ष में 30,000 करोड़ आकाशगंगाओं के बीच एक छोटे से क्षेत्र पर है। अंतरिक्ष में लगातार हो रही हलचल इससे भी ज्यादा रुचिपूर्ण है। पृथ्वी अपनी ही दूरी पर प्रति घंटा 1,670 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है और उसी समय वह इससे 103 गुना ज्यादा रफ्तार से सूर्य के आसपास भी घूमती है। पृथ्वी यह पूरा चक्कर प्रति घंटा 108,000 किलोमीटर की रफ्तार से काटती है। यह रफ्तार एक बुलेट की रफ्तार से करीब 60 गुना ज्यादा तेज है। उसी समय पृथ्वी और सूर्य दोनों वेगा नक्षत्र की ओर प्रति सेकंड 200 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ते हैं। यह असाधारण रफ्तार प्रति घंटा 7,20,000 किलोमीटर है। और इसी तरह हमारी आकाशगंगा भी हरकत में है। और जबकि हम इस अत्यंत तेज रफ्तार यात्रा से बिल्कुल बेखबर है जो हम हर पल कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने बिल्कुल दोष रहित संतुलन स्थापित कर रखा है जो हमें इस यात्रा का एहसास नहीं होने देता। क्या आपको कभी इस बात पर आश्चर्य हुआ कि एक पल के लिए भी हमको क्यों इस हलचल का एहसास तक नहीं होता? अभी इस वक्त जबकि आप यह फिल्म देख रहे हैं, आपको पृथ्वी की हरकत महसूस ही नहीं होती। चाहे आप किसी पार्क में बैठे हो या रास्ते पर चलते फिरते हो, आपको मालूम ही नहीं होता कि पृथ्वी अपनी ही दूरी पर घूम रही है। लेकिन हमारी पृथ्वी प्रति सेकंड 200 किलोमीटर की बहुत तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में विशाल सामूहिक यात्रा कर रही है। एक ही क्षण में हम 200 किलोमीटर आगे निकल लेते हैं और दूसरी क्षण में 400, 600, 800। मानव शरीर हमें क्या सोचने पर विवश करता है। जब भी सूर्य उगता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि हर सुबह इंसान स्वस्थ जाग सकता है। व्यक्ति जब सो जाता है तब वह अपना पूरा होश हवास खो बैठता है। इसके बावजूद वह वही चेतना और व्यक्तित्व के साथ फिर से नए दिन की शुरुआत करता है जैसा कि उसने पिछला दिन गुजारा था। फिर से वह सोच सकता है, बोल सकता है और देख सकता है। जबकि वह रात में सो जाता है तो अगली सुबह इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसे फिर से यह कृपाएं प्रदान की जाएगी। मनुष्य को इस बात पर सोचना चाहिए कि ईश्वर की उस पर बड़ी कृपाएं हैं और सुरक्षा एवं शरण जो उसको मिले हैं उस पर उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। लोगों को अपनी कमजोरी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जैसे कि ईश्वर ने कुरान में अध्याय 4 आयत 28 में फरमाया है, इंसान तुझे निर्बल पैदा किया गया है। जब लोग अपने खाने पीने और पहनने पर चौकस नहीं रहते तो वे आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। फ्लू का एक सूक्ष्म वायरस ही 60-70 किलो वजन वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार करने के लिए काफी है। ऐसे बीमार व्यक्ति के पास बस एक ही काम रह जाता है कि वो बिस्तर में आराम करे। इस दौरान उसके शरीर में अविरत संघर्ष चलता रहता है जिस पर उस बीमार व्यक्ति का कोई काबू नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि डॉक्टर उससे कुछ भी कहें या कुछ भी करें, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है जो उसे फिर से स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें जरूर याद करना चाहिए कि पैगंबर इब्राहिम ने अपनी प्रार्थना में क्या कहा जिसका वर्णन कुरान में है। वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे अच्छा करता है। मनुष्य के शरीर में जो चीजें हैं उसे विशेष ज्ञान से बनाया गया है। सर के बाल को भी, मनुष्य की भ्रुकुटी और पलकों के बाल एक निश्चित हद से ज्यादा बड़े नहीं होते। ये इसलिए कि उनकी लंबाई न बढ़ना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमारे सर के बाल जो मनुष्य के सौंदर्य के लिए महत्वपूर्ण है, वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और हम जब चाहें विभिन्न अंदाज में उसे बनाते सवारते रहते हैं। अब जरा इतना सोचो कि अगर हमारी पलकें हमारे सर के बाल की तरह बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा, और फिर हमारी पलकों को कौन आदेश देता है कि एक सीमा से आगे बढ़ना छोड़ दे। वह व्यक्ति जो इस प्रकार के सवालों पर विचार करता है वह फौरन समझ जाएगा कि शरीर का प्रत्येक अंग, उसका हर मिलीमीटर एक विशेष डिजाइन के अनुरूप बनाया गया है। हड्डियों के विकास एवं वृद्धि में भी एक विशेष सामंजस्य और संतुलन होता है। मनुष्य का दिमाग बचपन से ही विकसित होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ उसके अनुरूप उसकी खोपड़ी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर दिमाग और खोपड़ी की वृद्धि संतुलित एवं अनुपात से न हो और खोपड़ी छोटी हो जाए और दिमाग बढ़ जाए तो दिमाग खोपड़ी के दबाव से फट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। खोपड़ी और दिमाग दोनों निश्चित उम्र तक एक साथ बढ़ते रहते हैं और खोपड़ी एक तिजोरी की तरह दिमाग को अपने अंदर सुरक्षित रखती है। वो हड्डियां जो एक दूसरे के साथ एक खास संतुलन और अनुपात से बढ़ रही होती है, उनको कैसे मालूम होता है कि उन्हें एक विशेष सीमा तक जाकर रुक जाना है? अगर हड्डियां निरंतर बढ़ती रहें तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, अगर पसलियों की हड्डियां एक निश्चित सीमा तक पहुंचकर रुक न जाए तो वे हमारे मांस में घुसकर तकलीफ का कारण बन जाएगी और शरीर को चीरती हुई बाहर निकल आएगी। लेकिन हड्डियों की कोशिकाओं के सतर्क संचालन की वजह से ऐसा नहीं होता। हड्डियों की कोशिकाएं हमारे शरीर की प्रत्येक हड्डी को एक शिल्पकार की तरह आकार देती है। वे हड्डियों के हर वक्रित किनारों को आखिरी रूप देकर अपना काम पूर्ण कर देती हैं और बिल्कुल सही वक्त पर उनका बढ़ना रोक देती हैं। अब हमें इस बात पर सोचना चाहिए, अभी हमने जो बातें बताई हैं, क्या हड्डियों की कोशिकाओं में यह सब करने के लिए ज्ञान, चेतना, सहयोग और आयोजन की योग्यताएं होती हैं? इन कोशिकाओं को कैसे ज्ञान होता है कि कहां उनको रुकना है और कहां शुरू होना है? यद्यपि हमारे शरीर की सभी हड्डियां एक ही तरह की हड्डियों की कोशिकाओं से ही बनती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनमें से कुछ लचीली होती हैं और कुछ बहुत सख्त? कौन इन हड्डियों को उनके काम सौंपता है? कैसे हड्डियों के इन छोटे छोटे टुकड़े हमारे अत्यधिक कार्य करने वाले क्रियाशील हाथों को बनाते हैं? हमारे हाथ, पैर और उंगलियां बनाने वाली हड्डियां कैसे उस अनुपात को जान लेती हैं जो हमारे शरीर को समरूप और संतुलित रखने के लिए जरूरी होता है? मानव शरीर के काम करने की पूर्ण योग्यताओं को अच्छी तरह समझने के लिए ये वो सवालात हैं जो हमें अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। यह दावा कि यह सब चीजें आकस्मिक घटना के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आ गई है, वास्तव में एक ऐसा दावा है जो किसी भी तरह संभव नहीं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जो कोशिकाएं एक व्यक्ति को अस्तित्व देती हैं और वे अणु जो कोशिकाएं बनाते हैं अपने तौर पर ऐसे फैसले कर सके। इनमें से हर एक चीज ईश्वर की सृजनशील कारीगरी का प्रकट रूप है, जिसके जरिए उसने मनुष्य को परिपूर्ण सुंदर बनाया। कुरान की एक आयत में ईश्वर कहता है, उन हड्डियों की तरफ देख कैसे हमने उन्हें उभारा और मांस का लिबास पहनाया। सूचने पर विवश करता है। ईश्वर ने मनुष्य के लिए खाने और पीने की अनगिनत चीजों को पैदा किया है। इन सब का स्वाद एक दूसरे से भिन्न है। यह कृपाएं ईश्वर को प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। अल्लाह कहता है, अल्लाह वही तो है जिसने तुम्हें अच्छी और शुद्ध रोजी दी, वही अल्लाह तुम्हारा प्रभु पालनहार है, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह सारे संसार का स्वामी। अगर ईश्वर चाहता तो संसार में सिर्फ एक ही तरह की खाने की चीज होती, लेकिन मनुष्य को कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा के लिए उसने विभिन्न कृपाओं का सर्जन किया। यह ईश्वर की मनुष्य के प्रति दया एवं सद्भाव है। हमें ईश्वर की कृपाओं को याद दिलाने के लिए खाने पीने की हर चीज में उसकी निशानियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए देखें तो अधिकतर फल छिलके में लिपटे हुए बनाए गए। यह छिलके फल को गलने, सड़ने और खराब होने से सुरक्षित रखते हैं और देर तक उनको शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर और मधुर सुवासित रखते हैं। नारंगी, अंगूर और ऐसे ही दूसरे फल जो बड़ी मात्रा में विटामिन सी से भरपूर होते हैं, बहुत आसानी से खाए जा सके ऐसे बनाए गए हैं। यह सभी फल जाड़े के मौसम में पैदा होते हैं, जबकि लोगों को विटामिन सी की जरूरत होती है। गर्मियों में पानी की सख्त जरूरत होती है और ऐसे मौसम में प्यास बुझाने वाले फल तरबूज, खरबूजा, आड़ू और अंगूर अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। यह सब हकीकतें इस बात का सबूत हैं कि ईश्वर ने यह फल मनुष्यों के लिए ही पैदा किए हैं। फलों के दरख्तों की डालियों पर खिले हुए पुष्प पुंज और फलों से भरी हुई शाखों का दृश्य भी मनुष्यों को ईश्वर ने दिया हुआ एक सुंदर तोहफा है। अंगूर के गुच्छे, हरे और लाल सेब और आड़ू। जब आप छोटे से फल कीवी को दो हिस्सों में काटेंगे तो आप उसके अंदर उम्दा और बारीक नक्काशी देखेंगे। एक और फल जो अपने सुंदर रूप रंग से पहचाना जाता है वो है स्ट्रॉबेरी, जो कि हरे पत्तियों के बीच लाल रंग का होता है। ये सभी फल काली मिट्टी से पैदा होने के बावजूद हरे अपना अलग स्वाद, खुशबू और सुंदर रंग रखते हैं। ये सभी ईश्वर की कलात्मकता, उसका अनंत ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्रकट करते हैं। कुरान की एक आयत में ईश्वर इंसानों को इन सब कृपाओं के बारे में चिंतन मनन का आह्वान करता है। वो वही हस्ती है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए हर प्रकार की वनस्पति उगाई, फिर उससे हरी भरी पत्तियां निकाली जिससे हम तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गुच्छों से झुके हुए फलों के गुच्छे, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग एक दूसरे से मिलते जुलते और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इन दरख्तों के फल लाने और उस फल के पकने पर चिंतन मनन करो। निसंदेह ईमान लाने वालों के लिए इनमें बड़ी निशानियां हैं। प्रकृति में निशानियां। अगर आप बाहर प्राकृतिक माहौल में घूमने फिरने निकलो तो आपको कई सुंदर चीजें दिखाई देगी। रंगीन फूल, हरी भरी चारागाहें या छोटी छोटी चींटियां। तुच्छ और महत्वहीन चींटी का सर्जन भी आश्चर्यजनक गुणों के साथ किया गया है। यह छोटा सा कीड़ा पत्ते को काटकर टुकड़े कर सकता है या अपने कद से बड़े टुकड़ों को उठा सकता है और आसानी से अपने घोंसले में खींचकर ले जा सकता है। वो अपने कद की तुलना में लंबी दूरी तक सफर कर सकता है। वह पत्तियों के झुंड में भी अपना घोंसला ढूंढ सकता है। निश्चित रूप से यह छोटा सा जंतु इन चीजों का हिसाब खुद नहीं कर सकता। वह महिमावान और सर्वशक्तिमान हस्ती जो एक छोटी सी चींटी में प्रकट होती है और उसको प्रेरणा देती है वो अर रहमान यानी परम दयालु ही है। जिस तरह से वृक्ष बेल शाखों पर या किसी सतह पर फैलती है, इस प्रक्रिया पर हमें गहरा चिंतन करना चाहिए। अगर इसकी वृद्धि की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और उसको तेज मोशन में देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि बेल इस तरह से आगे बढ़ रही है जैसे उसमें चेतना हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है मानो उसने देखा कि नजदीक में एक डाली थी, उसकी तरफ वह आकृष्ट हुई और फिर उसके साथ लिपट गई। कभी कभी तो ये बेल शाखों के चारों तरफ अपने आप को लिपट कर कई बार मजबूत और सुरक्षित कर लेती हैं। इस तरह वह तेजी से फैलती हैं और जब वो एक दिशा में फैलना पूरा कर लेती है तो वह चारों ओर घूमती है, नीचे की तरफ रुक करती है और एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ जाती है। सुंदर चीज जिसे ईश्वर ने बनाया है वो है फूलों की खुशबू। जैसे कि गुलाब हमेशा तेज खुशबू देता है जो चारों तरफ हर दिशा में फैल जाती है, यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी गुलाब की खुशबू का विकल्प तैयार नहीं किया जा सका। जब कभी भी प्रयोगशाला में उसकी खुशबू की अनुकृति या नकल बनाने के प्रयास किए गए तो उसका परिणाम अत्यंत निराशाजनक मिला। जब भी गुलाब की खुशबू की अनुकृति बनाई जाती है तो सामान्यतः वह अत्यधिक तीव्र और तबीयत को आकुल और परेशान करने वाली होती है या फिर बहुत ही कम समय में वह फिक्की पड़ जाती है। जबकि गुलाब की खुशबू किसी भी तरह की परेशानी का कारण कभी नहीं होती। आप जब भी गुलाब तोड़ोगे उसके मुरझाने तक उसकी खुशबू वैसे ही रहेगी। पेड़ों में पानी का कई मीटर तक ऊपर पहुंच जाना भी एक चमत्कार है। क्या आपको कभी इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पानी किस तरह से ऊंचे और भव्य पेड़ों की डालियों और पत्तों तक पहुंच जाता है जिसे आप हर जगह देख सकते हो। पेड़ धरती की गहराई से पानी को कई मीटर ऊपर तक ले जाते हैं और उनको इसके लिए किसी पंप का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। इस उत्तम रचना और योजना को अच्छी तरह समझने के लिए इस उदाहरण पर विचार करते हैं। पानी को किसी मकान के सबसे ऊंचे मजले पर पहुंचाना हो तो पंप का उपयोग किया जाता है। पंप के बगैर पानी किसी निचली मंजिल तक भी नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन पेड़ ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरह के पंप या मोटर के उपयोग बिना वे किसी भी तरह अपने सबसे ऊंचे पत्ते तक पानी को ऊपर पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। पेड़ों की जड़ों और तनों में मौजूद बारीक नालियां पानी की सतह से फायदा उठा सके इस तरह बनाई गई हैं। जैसे ही पानी की सतह ऊपर चली जाती है नालियां अपने आप संकीर्ण हो जाती हैं ताकि पानी को ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद मिले। पानी के कण निरंतर एक दूसरे को ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं और पानी सबसे ऊंचे पत्तों तक पहुंच जाता है। यह सर्वशक्तिमान हस्ती ईश्वर ही है जिसने पत्तों में नसों की व्यवस्था और पानी के कणों में सामंजस्य पैदा किया। कुरान की निम्न आयत में बताया गया है कि वह ईश्वर है जो परम दयालु और मेहरबान है, जिसने मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों की सेवा के लिए पेड़ पौधे बनाए। वह अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती का सृजन किया और आकाश से पानी उतारा और उसके द्वारा तुम्हारी आजीविका के लिए फल उगाए। सामाजिक जीवन में संकेत। मारपीट और हमले, हिंसा और अपराध की कई रिपोर्टें हर रोज हम टेलीविजन पर देखते हैं। इस क्रूरता का मूल कारण यह है कि कुछ लोग अपना जीवन ईश्वर के बताए हुए नैतिक मूल्यों से बहुत दूर गुजारने का निर्णय कर चुके होते हैं। अधिकतर लोग जो अपना जीवन धार्मिक मूल्यों से दूर रहकर जीते हैं, वो दूसरों के प्रति दया छोड़कर मारपीट और हमला कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के गुनाह कर सकते हैं। इस क्रूरता का मूल कारण ये है कि लोगों को ईश्वर का भय नहीं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। वो जानते नहीं या अपने जल्द हासिल होने वाले लाभ की खातिर ईश्वर के भय को भुला बैठते हैं कि उनको उसके सामने इसका हिसाब देना होगा। लेकिन धर्म हमें निखालसता, सद्भाव, सच्चाई, ईमानदारी, दया और त्याग और अन्य नैतिक गुणों की ताकीद करता है। इन मूल्यों द्वारा समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना होती है। कई बार हम समाचार माध्यमों से प्राकृतिक आपदा की नई नई कहानियां सुनते रहते हैं। इंसानों को इस दुनिया में किसी भी पल तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर हम कम ही उम्मीद करते हैं कि कभी भी भारी भूचाल आ सकता है, आग भड़क सकती है या बाढ़ आ सकती है। वो टेक्नोलॉजी जो लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, उसको भी प्राकृतिक आपदा एक ही क्षण में नष्ट कर सकती है। सिर्फ एक पल में लोग अपने घर, गाड़ियां या अपने प्रिय लोगों को खो सकते हैं। जो व्यक्ति इन खबरों पर ध्यान देता है, उसे बस इतना सोचना चाहिए कि वो कितना बेबस है, न उसका कोई मददगार है या दोस्त सिवाय ईश्वर के। ईश्वर इस सच्चाई को कुरान में इस तरह प्रकट करता है, ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह तो निस्पृह स्वयं प्रशंसित है। कुरान क्या कहता है? ईश्वर ने कुरान मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में इसकी प्रत्येक आयत पर चिंतन मनन करना चाहिए। कुरान में ईश्वर कई बातों पर सोच विचार करने का आह्वान करता है, जैसे कि वह हमें आमंत्रित करता है कि हम स्वयं हमारे सर्जन पर सोचें। अतः चाहिए कि मनुष्य देखे कि वह किसी चीज से पैदा किया गया है, वो उछलते पानी से पैदा किया गया है। ईश्वर हमें आकाशों और धरती के सृजन के बारे में सोचने के लिए कहता है। निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात और दिन के आगे पीछे बारी बारी आने में उन बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं, वो जो खड़े बैठे और करवट लेते अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं कि ऐ हमारे पालनहार, तूने यह सब निरर्थक नहीं बनाया है, पवित्र और महान है तू, अतः हमें आग की यातना से बचा ले। ईश्वर हमें इस श्लोक में हमारे अस्थाई जीवन के बारे में चिंतन करने का आह्वान करता है। और ये सांसारिक जीवन है क्या? केवल खेल तमाशे? और निसंदेह परलोक का जीवन ही तो वास्तविक है, यही अच्छा होता कि वे जानते। बस जो कुछ भी तुम्हें दिया गया है वो तो सांसारिक जीवन की पूंजी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह उन लोगों के लिए उत्तम और शेष रहने वाला है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। ईश्वर इस बात पर विचार करने का आमंत्रण देता है कि यह समग्र सृष्टि इंसानों के लिए बनाई गई है। जो कुछ भी आकाशों और धरती में है उसने उन सबको अपनी ओर से तुम्हारे काम में लगा रखा है। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार करते हैं। ईश्वर हमें हर जीवित चीजों के बारे में जो उसने बनाई है सोचने का आह्वान करता है। चौपायों में भी तुम्हारे एक बड़ी शिक्षा सामग्री है। जो कुछ उनके पेटों में है उसमें से गोबर और खून के बीच से हम तुम्हें विशुद्ध दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए अत्यंत प्रिय है। ईश्वर हमें परलोक, पुनर्जीवन और न्याय के दिन के बारे में गहराई से विचार करने को कहता है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई और बुराई के सामने मौजूद पाएगा वह कामना करेगा कि काश मेरे और इस शैतान के बीच बहुत दूरी का फासला होता, और अल्लाह तुम्हें अपना भय दिलाता है और वह अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। समापन। ईश्वर के सर्जन और इस दुनिया के जीवन की सच्चाई के रहस्य को पा लेता है वह हर चीज में मौजूद ईश्वर के गुणों को पहचान लेगा, न कि बहुत सारे लोगों की तरह वो सारी जिंदगी ये सोचता रहे कि वो क्यों जिंदा है। अल्लाह ने जो ज्ञान उसको दिया है उसको वो मजबूती से थाम लेगा, अल्लाह के आदेशों पर चिंतन मनन शुरू कर देगा। परिणाम स्वरूप वो अल्लाह की कृपाओं को पाकर किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा खुशी और आनंद की अनुभूति करेगा, और वो अनावश्यक परेशान भी नहीं होगा और ना ही सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति में अपने आप को ग्रस्त करेगा। यह सिर्फ कुछ ही अद्भुत चीजें हैं जो चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में मिलती हैं। हमेशा सच्चाई को देखने और उस पर सोच विचार करने से वो व्यक्ति अपने अनंत और शाश्वत परलोक जीवन में अल्लाह की प्रसन्नता, प्रेम और स्वर्ग का अधिकारी होगा। अल्लाह हमारे सामने स्पष्ट करता है कि उसके बंदे इसी तरह सफल हो सकते हैं। अतः अपने आप को सीधे व ठीक धर्म की ओर एकाग्र कर लो, इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जो टल नहीं सकता। उस दिन वो अलग अलग कर दिए जाएंगे। जिस किसी ने इनकार किया तो उसका इनकार उसी के लिए घातक सिद्ध होगा, और जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया उन्होंने अपने ही लिए सफलता का मार्ग तैयार किया, ताकि वो जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए वो अपने उदार अनुग्रह से उन्हें बदला दे। निश्चय ही वह कृतज्ञ लोगों को पसंद नहीं करता।